पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के ही श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति उसी समय होगी जब हमारा जन्म और मृत्यु का रोग कट जाएगा। अब ब्रह्म कह रहा है कि परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उस पूर्ण ब्रह्म की साधना करो। उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस सचिदानंद घन की वाणी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि उसमें विस्तार से ज्ञान कहा हुआ है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है। उसके उसकी पाने की विधि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविद समर्थ। ओम तत्सत, ये सचिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की साधना, उसकी प्राप्ति, उससे मिलने वाले लाभ को लेने के लिए ये तीन मंत्र का जाप है। ओम तत्सत ये जाप नहीं है, ओम तत्सत इसके आगे हरि ओर लगा देते हैं ये नकली संत, हरि ओम तत्सत ये गोटा लाए जाए, इससे कोई लाभ नहीं होना। ओनली तीन मंत्र ओम तत् और सत्य सांकेतिक ये दास बताएगा और दास से ही प्राप्त करके लाभ होगा। चाहे मेरे से नाम लेकर कोई नकली अपनी कर्म फोड़ भी रहा हो, नाम भी देता, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ये फाइनल समझ लेना, अभिमान नहीं करता क्योंकि दास इन नकलियों का दुखी करा हुआ है। एक ये दास तो सच्चाई समझा, सत्य ज्ञान देने वाला, ये करोड़ों नकली उल्टी साधना जीव को भरमाने वाले, लेकिन सच के सामने, सत्य के सामने असत्य कभी टिक नहीं सकता, रोशनी के सामने अंधेरा रुक नहीं सकता, ये बट नेचुरल है। आप देख लेना कुछ दिनों में इन सभी संतों ने हाथ खड़े करने पड़ेंगे जनता के सामने कि हमने पता नहीं था, अज्ञानता से हमने ये सुना, जैसा भी सुना था उस ज्ञान को आधार मानकर हम प्रचार कर रहे थे और वास्तविक ज्ञान यही है। ये मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे जनता मनावेगी ना उनसे दूर हो लेगी। दूर तो होना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं और जनता भोली श्रद्धालुओं का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं। अब आपने सुन लिया तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, ब्रह्मा विष्णु महेश ही सत्संगी नहीं है, दुर्गा भी सत्संगी नहीं है, और ब्रह्म भी सत्संगी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप उस परमात्मा की नहीं जानता। वो संकेत अवश्य करता है कि कोई और परमात्मा है, उसकी भक्ति करो, और उसके भक्ति विधि और वो तत्व ज्ञान मुझे ज्ञान नहीं, इसलिए वो भी सत्संगी नहीं। अब और एक झलक दिखाते हैं, यही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है, और इसके 414 पृष्ठ पे और छठे सकंद में वो आपने 562 जो पढ़ा था वो सातवां सकंद था, ये छठे सकंद में और 414 पृष्ठ पे जन्मे जय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, जन्मे जय को व्यास जी राइटर ऑफ द पुराण बता रहा है, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। आलिया और कलयुग सतयुग के ब्राह्मण ऋषियों का ब्राह्मण को चाहे ऋषि कहते हैं कि वो वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, तेरा गजब हो। और ये कलयुग के ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है, ये सतयुग के ब्राह्मणों की यह बुद्धि थी, ऐसा उच्छा ज्ञान था, नकली ज्ञान था इनका, तो वर्तमान के ब्राह्मण ऋषि और ये नकली गुरु ये क्या बता पाएंगे, ये तो स्वयं भ्रमित है। अब देखिए कलयुग के ब्राह्मणों की दशा के बताई है इसी छठे सकंद के इसी 414 पृष्ठ पे, ये आपको सुनाया अभी, और इसी पैरे में इसी पृष्ठ पे धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ हरास हो गया, सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में अब देखो उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वो इस कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस माने जाते थे वो कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना, पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। तीन लोक और भवन चतुर्दश को ये नहीं सत्संगी, अपुण्यात्मा इस काल ने जानबूझकर हमें गुमराह किया हुआ है। इसका उद्देश्य यह है कि इन प्राणियों को इनके पिता के बारे में और इनके मूल स्थान के विषय में जानकारी ना हो जाए, कहीं ये यहां से भाग ना जाए, इसने हर तरह से हमें बाई फोर्स बांध रखा है, और इसके लिए एक एक गुण युक्त हमारे में से ही एक एक पुण्यात्मा को इसने सिलेक्ट कर लिया और उनका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रख दिया और उनको एक एक गुण युक्त कर दिया, ना ब्रह्मा के बस की बात, ना विष्णु जी के बस की बात, ना शिव जी के बस की बात, क्योंकि इस काल ने बड़ी सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत हम सभी को यहां फंसा रखा, रोक रखा, इनको तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया, इनसे निकल रहे गुण से हम प्रभावित हैं, भगवान ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हम यहां संतानों उत्पत्ति करते और फिर यहां के राजपाट छाट की हम यहां की चाह करते हैं, जैसे कोई शराबी ने शराब पी ली या भांग पी ली की तरह, उसका बस की बात नहीं है, वो तो वैसी ही गतिविधि करेगा ही करेगा, उसकी कोई बसावे को नहीं, वो तो उसको कोई एंटीबायोटिक वस्तु दी जा, वो नशा उतरे उसका, फिर वो उठे उतरे की। अब शराब पी करके इंसान कहीं भी गिरा पड़ा है, चाहे कितर मूत में पड़ा है पेशाब में और चाहे कितर रेत में पड़ा है, उसको पता ही नहीं तू कहाँ है। और जब उसका वो नशा उतर जाता है फिर उसको वो देखता तू कहाँ पड़ा था, फिर उसको बहुत गलानी होती है। तो ऐसे हम इस गंदे लोक में फंसे पड़े हैं, हमारे को कितना धोखा दे रखा है। कहते हैं हाड़ चाम का पुतला यू मानस दर दिया नाम, इस शरीर के अंदर हाड़ चाम, कहते मांस के ऊपर हाड़ मांस और इस रक्त के ऊपर परमात्मा कहते हैं ये चाम लपेट दिया। कबीर कहा गर्भ यो चाम लपेटे हाड़, ये चाम लपेटे हड़ और हैवर गैवर छत्तर तल ते भी देवा खड। यानी जो राजा लोग थे जिनके खूब ठाठ बाठ थे, छत्र की तना करते उनको ऊपर, अंत में वो भी मट्टी में मिल गई। और फिर हमारे को यहां धोखा दे रखा है, हमारे को बाई फोर्स हमारे जबरदस्ती संतान उत्पत्ति करवाता है। फिर हमारे सतोगुण के प्रभाव से, विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में इतनी ममता फंस रही है, जीव के बस की बात नहीं ये इनसे मोह डाले। यानी संपत्ति से मोह, संतान से मोह नहीं हट सकता, जीव के बस का नहीं है चाहे कितनी बात बना ले। अब जैसे द्रोणाचार्य था, गुरु पद पर था, औरों को शिक्षा दिया करता भी मोह नहीं करना चाहिए, मृत्यु सबकी होनी है, हैं किसी का मर जाता उन्हें शिक्षा देना जाता था। और जब उसको पता चला कि अश्वत्थामा मर गया महाभारत के युद्ध में, कलेजा हिल गया उस आदमी का, टक्कर मारी उसने अपने लागे जो मेरा पटा, यानी इतना जकड़ा हुआ मोह में, गुरु पद पर होकर भी वो मोह से दूर नहीं था, औरों को बता कि उसका चोट ना लग गई थी जब तक। तो ये जीव के बस का नहीं, घर छोड़ जाते हैं सन्यासी बन जाते हैं लेकिन यो मोह नहीं छूट सकता। कबीर साहब कहते हैं मन के मारे बन गए ये बंतज बस्ती मां, कह कबीर के करो यो मन त मन ना। ये जीव के बस का नहीं, संपत्ति और संतान तो मोह हटा ली। एक बार एक बाबा जी बन गया बेचारा, भक्ति की प्रेरणा हुई, ज्ञान सुनिया और घर छोड़ गया। ज्ञान सुनने से प्रेरणा तो सभी में आ जाती है क्योंकि आत्मा तो एक बार अंगड़ाई लेती है और सब बंधन तोड़कर चल पड़ती है जब इसको परमात्मा की तड़फ होती है। और उस समय में अगर इसको सतगुरु मिल जा, ऐसे जब ये खूब प्रेरित होता है तो उस पैरी आत्मा का कल्याण हो जा। अब ऐसी प्रेरणा हो जाती है ज्ञान सुनने के बाद, आत्मा एक बार तो फड़कती है कि तू तो गलत फंस गया, लेकिन उसके लिए वो कहां समाधान ढूंढते, संतों के पास भाग ले घर छोड़ गए। तो ऐसे ही एक किसान घर छोड़ गए, छोटे छोटे बालक थे दो तीन चार बच्चे, और उनको भी छोड़ करके प्रेरणा होगी और वैराग ले लिया, जंगल छोड़ना चला गया, वहां कोई गुरु मिल गया उसको, संत जिसा मिला उसने उसको पढ़ाई पढ़ा दी। अब वो जो जंगल में बैठे हैं या कहीं दूर गुफा बनाकर बैठे हैं, कोई डेरा आश्रम बना रहे हैं, उनको पता होता है कि ये जो प्रेरित होकर आज आया है कुछ दिनों में यू फिर ना फंस जा उल्टा, तेरा सेवक ना चला जा। तो उसने क्या किया, 12 वर्ष तक उस व्यक्ति को कहीं जाने ही नहीं दिया और अपने आश्रम में रखा, वहां एक गुफा में कह दिया यहां तू भजन कर ले, साधना कर ले। वो साधना करता रहा। एक दिन वो गुरुजी बीमार हो गया और उसने सोचा ये भी वो पक्का हो गया, ये इसका कुछ बात याद आई को ना घर की, ये भी वो सही हो रहा है। कहा उसको कि जा भाई, भिक्षा लिया। अब वो भिक्षा लेने के लिए गया तो एक माई आई भिक्षा डालने के लिए, एक बालक ने तो गोदी ले रही, एक उसकी उसके दामन न पकड़ रहा, और वह जो ही उसको भिक्षा डालने आई एकदम उसके मन में अपने बालक याद आ गए कि मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया था, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 4 का, कोई 7 या 8 का होगा। और उसके मन में आया कि मेरी अकेली पत्नी ने उन बालकों की कैसे परवरिश की होगी, हे भगवान, उनकी कदे ब्रह्म में टी हो रही हो, वो कदे दुखी हो रही हो अकेली, बल्क बच्चे कैसे पाले होंगे। यों सोचकर उसने विचार किया कि चल एक बार घर चलता हूं, देख कर आऊं, वहां मैंने रहना थोड़ा ही है, एक देख लूंगा वो मर गए एक जीव है। एक मन चल पड़ा घर की तरफ, उस जोड़ी ने पटक के ले रहा था जो थैला, फिर उसने सोची रे छोड़े ने जो होली जाली, इब क्यों पंगे में पा दे है, चल वापस। वह जोड़ी फेर ठाक वापस चल पड़ा। 100 फुट गया था, इतना फेर प्रेरणा आ गई रहा, एक बार देखने में के डर के पहचान में आऊ, उसी तो बडेरी उम्र होगी और दाढ़ी बढ़री है, नो कह कहो फिर वापस चल पड़ा। फिर वापस नो बोला रहा छोड़े ने क्यों पंगे में पा दे रहा, चल नहीं चल। 100 कदम फिर वापस, फिर उसके मन में आई के खेता में देख आऊंगा, दूर तो उड़ा के पछाण हूं फसल में बढ़के अन्य देख लूंगा, क्योंकि किसान थे पहले तो खेतों में ही काम होता था, पढ़ाई लिखाई थी नहीं, बच्चे थे वो सारे खेत में ही जाते थे, सुबह उठते ही अपना धंधा करते थे मजदूरी। तो उसने सोचा अपने खेतों में जाकर दूर से देख लूंगा, पता तो लग जाए मेरे खेत है, इनमें जो काम कर रहा है वो मेरे बच्चे ही होंगे। इस उद्देश्य से चल पड़ा। अब जब खेतों में वो जा रहा था, वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई उस बाबा जी का, वो अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। उसके छोटे भाई की नजर पड़ गई कि यू आदमी हमारे खेतों की तरफ आ रहा है, 1 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो यू मेरा भाई है, उसकी चाल से पहचान लिया उसको। उसने अपनी भाभी से कहा कि मेरा भाई आ गया, तो वह कहने लगी मजाक ना करा कर, तने सारी आनी ये बात भाव है। उसके देवर ने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, और वो आन लग रहा, देख कतिनो किनो चाल है और आ गया। तो आने बोली आ जाएगा तो टक्का को ना, पहले यही ना गड्ढे था, यू फेर जाओगा। उसका भाई बोला कति नहीं जान दू, इसका ऐसा काम कर दूंगा, तू थोड़ा सा सहयोग दे दे मेरे को। क्या कि मैं ये तुम्हारे खेत में जो किकर है सिसम टाली बोले पंजाबी में, और वो उनके उस बाबा जी वाले खेत में डोली से यानी उसकी सरद से भी 5-10 फुट बाबा जी वाले खेत में थी। जो बोला उसका देवर कहने लगा मैं इसने काटन लगूंगा कुआड़िए ते, और तो शोर मचा दिए अदनों के, ये मेरी सीसम ने काटे, देख श्रेया मांगा कर रहा, आज मेरा धनी कोई ना, इसलिए तू ऐसा कर रहा है, वो होता तो तू के सीसम काट लेता मेरी। तो उसने वो ये फंड रच दिया जो उसने सोच समझ कर रखा था। अब वो बाबा जी स्पीड ते आ रहा था, उसने देखा के रोला हो रहा भाई, तो वहां कुछ फसल बड़ी बड़ी थी, उस फसल में बड़का उसने सोचा तो नो देख ही रोला क्यों हो रहा है, मेरे खेत में या मेरी पत्नी है और यो मेरा भाई है। तो नजदीक सी जाकर बड़का उस फसल में नो बैठ गया, नो देखा और वो काटन लग रहा सिसम को, और वह लड़े रोवर नो कह उसने धक्के दे, तू आए मेरी सिसम क्यों काटे, मेरा आज आदमी कोई ना, इसलिए तू देख 5 फुट मेरे खेत में फिर भी नो कह मेरी से है, ऐसा जुलम कर रखा मेरी गेला। अब वह ली अंगड़ाई ममता ने, एकदम बाबा जी उठा रहे, एकली नहीं से मैं भी आ लिया सू। अब वो उसने भाई ने देखा यू कौन भाई, तू कौन, अग इस खेत आला ने बोला जाता रहे तेरे किसे मुंडे के रहा कितने काम है, नो कह नाले मैं इसका भाई सू, मेरा खेत से मेरा भाई सा ना था, जिसे तू उलिया बिगाड़ रखा, मेरा भाई तो दाढ़ी मूछ नहीं थी उसका। अब बाबा जी ने सोचा भाई नो भी बात नहीं बनी, दाढ़ी मूछ भी दुखी करें, अपने पहचान में नहीं आ रहा तू, तू वहां खेतों में कोई नाई गया हुआ था किसी दूसरे आली के बाल काटन, वहां पहुंच गया बाबा जी, और उसने नाई का नाम लेकर बोला रे फलाने तू जाने मने, अकना भाई बाबा जी तन्ने क्यों जानू मैं, बोला मैं वैसे वो हूं फलाना, वो नाम है मेरा। बोला अच्छा कैसे आ गया, तू आ गया, बोला आ गया कि नाश हो गया कति, मेरा भाई देख सरिया हंगा कर रहा है, मारी सिस्टम ने कट है जो हमारे खेत में है, फिर क्या करेगा, नू कह तू ओ कोनी, तुम मेरी दाढ़ी मुझ कर साफ, फिर बताऊंगा मैं ओए सुंक नहीं। अब नाई ने पहले उस्से का काम करया, उस तरह फेर दिया और वादा डी मुझ साफ कर दी। फिर वो गया उसने भाई दौरे देख ई पहचान ले मैं वही हूं के नहीं। और भाई ने फिर तो उनकी बतलाई भी बातें थी, रोन लाग गया आइये रमरे भाई आइये रखी चला गया, उस सीने का ला लिया और उड़े फिट कर दिया। अगले भाई करी मारिये जोटा मार रहा आले लगा दिया। कहने का भाव है कि वहीं रह गया वो, फिर अपने धंधा करने लग गया। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती मां, और कह कबीर के एक रुयो मन तमाने ना। तो इस भगवान काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने हमारे को इतना जबरदस्त जकड़ रखा है जीव के बस का नहीं। ये तो परमात्मा कबीर देव आवैर ये ज्ञान समझावे आए है, यो ज्ञान समझ में आवे प्राणी कह तब इसकी यहां से जड़ हल है। अपने आत्माओं अब तीसरा गुण है तम गुण शिव जी के अंदर से निकल रहा। अब इसके कारण आप देख लो, घर में देखो कि तब व्यवहार में देख लो या संसार में देखो, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं परिवार के सदस्य और छोटी सी बात हाना हो जा दे लठम लठोर, कहता अपनी पत्नी ने फोड़ कर रहा, कह डांगरा ने तोड़ कर, कह क्वाड फूक फोड़ दे, कह एसी टीवीया ने फोड़ लग जा, ये कोई बात है। तो ये इतना प्रभाव है इस जीव का, कितना प्यारा मित्र हो मन माने थोड़ी सी बात पर आपस में कटके मर जा। इस कारण से हम तीनों गुणों के द्वारा इस काल ने जकड़वा रखे और परमात्मा कबीर जी कहते हैं तुम यहां आकर के इस ब्राणी आग में जल रहे हो, तुम इस लोक के वासी नहीं हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। कहते हैं अब आत्मा तो सतलोक से आई है, उसको तो वो सुख चाहिए, ना मृत्यु को ये पसंद करती ना बुढ़ापे को। अब आप देख रहे हो कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, एक बुढ़िया लगभग 70 साल की होगी, वो पहली बार आई थी या दूसरी बार आई है, मैंने उसको कह दिया बुढ़िया ठीक से, जो कह महाराज बुढ़िया कितना होगी मई बह ओ तरा गज भैया, यानी ये स्वाभाविक है। एक व्यक्ति हरेक को अपने को नहीं सोचा है कि मैं युवा नजर आऊं, युवा बना रहूं और कदे नहीं मरूं, तो ये यहां नहीं हो सकता। वो तो सतलोक में है, वहां जरा और मरण नहीं है, वहां बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है और वहां कोई रोग शरीर में नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है। वहां पर सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष, अमृत वृक्ष, अमृत जैसे फलों से लदपद मीठे बहुत सुंदर, हर प्रकार के वहां दूधों के जो है पूरे दरिया बह रही हैं, समुद्र भरे पड़े हैं, हर तरह की वहां सुविधा है। हम उसको छोड़कर यहां भिखारी बन गए, सारी उम्र बीत जाए इस शरीर के लिए ही लगे रहते हैं, इसी के जूते खरीदा, इसी को सुरक्षित रखने के लिए कपड़े खरीदा, इसी के सुरक्षित रखने के लिए सुबह से लेकर शाम तक इसी किसे मेहनत करें, इससे हम डालें और सारी उम्र बीत जाती है और यो रहना को नहीं, आखिर में मर जा, किसी तक कारण से मर सकता है, समाप्त हो सकता है। तो हमारी इतनी अकल कामना कर दी कि हम यहां कर के रहे हैं, ये किले हम बना रहे हैं, कोठी पर कोठी बना रहे हैं, पिछला हिसाब देखो। इस ज्ञान से हमारी वो आंखें बनेंगी, आंखें खुल जाएंगी जो काल ने मोतियाबिंद कर रखा है। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी व जमके पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका थी, रावण जैसे सूरवीर थे और एक पलक में राज रहा ना, स्वयं रहा ना, राज विहीन हो गया, राज विराजी और काल के पड़े दजीरम, यम के दूत जुड़ के ले गए उसने। अपने आत्मा आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोठी बना पड़ी ऐसी किता दो नंबर का धंधा करके या किता एक नंबर का करे वो कोठी बना ही नहीं सकता, या फिर किता और अड़गम तगड़म करके दो के बीस बना के किता मिलावट करके कोई डुप्लीकेट माल के ओरिजिनल करके बेच के यानी 36 पंगे करके वो कोठी काटेगा, और वह कोठी रह को जाए वो भी नहीं रहना उसमें, और वो पाप कर्म जो के तो रह जाएंगे, फिर कुत्ता बनके उस कोठी के चारों तरफ घूमया करेगा और शरीर पर खाज लगेगी उन दुष्कर्मों के कारण। पुण्यात्माओं आप जी को जब ये ज्ञान हो जाएगा यहां से कलेजा फटन हो जाएगा आपका, रात ने भी नींद नहीं आओगी, तो तड़फ हो जाएगी, यानी ऐसी हेट बनेगी संसार से, हेट बनाकर ज्ञान तय। अब जैसे किसी वस्तु में किसी बोतल में या किसी और पात्र में ये पता नहीं कि विष है तो उसको सुरक्षित रखे हुए उसको उठाए फिर रहे हैं कि काम आओगा समय पर, जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये विष है उसका हाथ भी ना लावर ना बड़कन लाण दे और किता धरती खोज कर उसका मां ठोकेगा ठाक दाब दे बीमारी ना पर किसी और के भी हाथ ना लग जाए। कहते हैं भौरा ना भर में विष के वन में चल बेगमपुर बागरे, ये सब विषय विकारों का और ये विष है जो हमारे नस नस में समाया हुआ है, इन तीनों गुणों का काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी ये पांचों विकार हमारे अंदर समाये हुए हैं, इन विष को उतारने के लिए ये सत्संग की आवश्यकता है जो कबीर परमेश्वर ने हमें बताया है। अपने आत्मा जो पहले के भक्त हैं 10-15 वर्ष से 10 वर्ष से 6-7 वर्ष से जो ठीक सुचारू लग रहे हैं आज उनके घर में सुख देख लो आप, ठीक है उनको कोई कष्ट नहीं आ रहा इसलिए भले ही उनको ये ना हो कि हमें विशेष लाभ नहीं हो रहा, लेकिन जय शरण में ना है वो प्राणी एक बार हॉस्पिटल में जाकर देख लेना कोई आसपास हॉस्पिटल हो आपके मेडिकल में देख लेना रोहतक, जब यो मन बकवाद करा करता है कादी वह तो वहां हॉस्पिटल में चक्कर लाते वहां देखा किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कोड लग रहा है, किसी को कैंसर हो रही है, किसी का इकलौता बेटा वहां तड़फ रहा है, माँ बाप रो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, किसी का दरंग मार रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कीता नली ला रखी है, किसी का कीता का टट्टी काट रखी है, यह दुर्गति हो रही प्राणी है की, और जो मालिक की शरण में है वो आराम से सहन से रह रहे हैं। अब उन्हें नो लगता होगा कहा देना कि हमने विशेष लाभ ना हो रहा, अरे ऐसी बात नहीं है, वैसे तो ऐसा है ही नहीं, फिर भी तो कहने का भाव ये है कि जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि हम इसे गंदे लोक में फंसे पड़े हैं, और मान लीजिए इस जन्म में तो आपने कहा मकान बढ़िया बना भी लिया तो आगे के मिलेगा इसमें, फिर दोबारा जन्म गोपन कर्मी को फिर मनुष्य शरीर मिल गया तो फिर ये प्रोसीजर शुरू है, यह दुर्गति फिर रहेगी। अपने आत्मा अब पुराने भक्त हैं वो इस अतिथि के निकट जा रहे हैं, अब वो केवल यहां से यही कहते हैं जी पीछा छुटवाइयो इबके ना छोड़ियो यहां पर इस गंदे लोक में, ठीक है वो अपने काम भी कर रहे हैं धंधा भी कर रहे हैं लेकिन उनकी उनके अंदर जगह बन चुकी है कि यहां हम दोबारा ना आवा परमात्मा। अब जब इसके जिसके जहां आशा तहां बासा हुई अब हमने यहां ना आने के लिए कहां जाए, वो स्थान पता लग गया कि सतलोक है। एक भक्त कहने लगा ये सारा ज्ञान सुनकर और अच्छा बुद्धिमान सा व्यक्ति दिखे 50-55 साल की उम्र का 60 के आसपास था वो और एजुकेटेड आदमी दिखे, उसे चर्चा कर दी दास ने आज से 15 साल 10 साल पहले 12 साल पहले, वो काफी प्रभावित हुआ, फिर कहने लगा कि महाराज जी मैं पक्की धुन का आदमी हूं और जो ज्ञान आपने बताया है ये आज तक किसी ने जिक्र भी नहीं किया, मेरा गया को सपने में भी नहीं सुना, जो कोई सतलोक है ऊपर और वहां सारे सुख हैं और मैं ऐसा धुन का पक्का हूं जब मैंने नाम ले लिया मैं काम पूरा करा करूं और मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं मैं अकेला वहां चला जा रहा कोई भी ना पावे मैंने तो मेरा जी ना लागे इसलिए मैं नाम लूं को नहीं। मैंने उससे कहा भगत आदमी अरे ये दास कहे और आंखों देखी कितने संत कहन लाग रहे। तो वो कहने लगा जी ठीक से आप भी कह रहे हो और भी कह रहे होंगे, पर मन ने तो आज सुना है और मैं नाम को नहीं लूं क्योंकि मैं लाग गया तो पक्का काम करूंगा, मुझे डर है कहीं मैं इकला वहां धक्के खाऊं कोई भी ना पाओ मेरा जी लाग गया को नहीं। मैंने कहा फिर यहां के जी लाग गएगा तो गधा बन गया सूर बन गया कुत्ता बन जाएगा दोबारा आके, फिर नो बलाड़े घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, कोई बात ना गधा बनो चाहे सूर बनो। यानी ऐसी वृत्ति फसगी हमारी यहां पर, और उसका ये दृष्टिकोण भी एक पहली बार ये सुनते हैं कि कहीं उड़ा कोई गप्पे मारता हो यो कुछ भी ना हो वैसे सट्टे मारो, नहीं ये भगवान की बताई हुई बातें हैं और वेदों में प्रमाण, वेदों को तो पवित्र हिंदू धर्म ऑथेंटिक शास्त्र मानता है, सत्य शास्त्र मानता है, प्रमाणित शास्त्र मानता है और उनमें प्रमाण और आंखों देखा संतों ने प्रमाण दिया। तो जो पुराने भक्त हैं उनको परमात्मा ने बहुत सुख दिया, अब वो सुख नहीं मांग रहे क्योंकि वो सुख तो उनको बिना मांगे मिल रहा है क्योंकि वो पुण्य धर्म ऐसा भक्ति कर रहे हैं। कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो पहले आपको ये लाभ ही शुरू करते हैं, जो प्रथम मंत्र आपको देते हैं, और जो भक्त नए आए हैं पहली बार आए हैं वो किसी को प्रेतों तो दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई रोग कष्ट है, किसी के पुत्र को नहीं किसी का और बीमारी है, कोई धन का अभाव है, किसी के पशु मर जाते हैं, तो वो सिर्फ यही मांगने आते हैं कि हे भगवान हमें ये वस्तु मिले। अंधा आंख चाहता है, पुत्रहीन संतान चाहता है, निर्धन केवल धन मांगता है। और पुण्यात्माओं जब उसकी यह डिमांड पूरी हो जाती है तो फिर वो परमात्मा की तरफ कुछ सोचता है। अब हम इतने अज्ञानी और विवश कर दिए काल भगवान ने, तो परमात्मा कबीर जी के शरण में आने के उपरांत आपको कुछ दिन विश्वास कर लगना पड़ेगा और विश्वास भी करा देगा, ये समर्थ शक्ति है। अविश्वास कैसे परमात्मा कराता अपनी प्यारी आत्मा पे, एक बहन ने पत्र लिखा तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे दुखी हूं और किसी ने मेरे काफी पैसे ले लिए वापस नहीं दे रहा, कई लाख रुपए, और मेरी भतीजी आपसे नाम लिए हुए है, उसके पति को बहुत भयंकर बीमारी थी, इससे हम परिचित हैं, वो बटेऊ ऐसा रोग यानी उसका एड्स थी 10 साल पहले की बात है, उसने नाम लिया, वो लड़का कति स्वस्थ हो गया उस लड़की का पति। उसके बाद फिर एक लड़की का नाम बताया कि सुनीता नाम की, वो जो जिसका पति ठीक हुआ उस लड़की की भाभी, वो भी नाम ले रखा उसने, उसका बालक होने वाला था और बच्चा ना होने के कारण तंग होगी तो उसको हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल में ले गए तो वहां डॉक्टरनी आई, प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरनी आई तो क्या था कि बच्चा उल्टा था, एक पैर बाहर आ गया, डॉक्टरनी ने जब देखा नो बोली इसने ले जाड़े ठाके तो मन मरवाओगी के या तो मरगी ये नहीं जी सकती, तो उस लड़की ने जिसका बालक हुआ था जब उसने ये बात सुनी वह नो बोली हाय री वाह मरगी नाम ले रही। अब उसकी जो ननन थी उसने कहा, जो चिट्ठी लिखने वाली बता रही है कि उसने उसको कहा कि तुम मां ने याद ना करे कबीर बंदी छोड़ दे और गुरुजी ने याद करे। ये बेबे बता रही है कि जो ही उस लड़की ने बंदी छोड़ कबीर जी और इस दास का नाम लिया उसी समय वो पैर उल्टा अंदर चला गया और लड़का सीधा हो गया और 2 मिनट में बालक हो गया, लड़का हो गया। बोलो सतगुरु जी। तो इस बयान ने लिखा है कि जी मेरा कुछ कच्चा पक्का सा विश्वास था पर उस तो मेरा और दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान है तो यहीं पर है, ई मनोव मिल गया और मेरा भी कष्ट दूर अवश्य निवारण हो। तो पुण्यात्मा परमात्मा है तो वो सारे काम करेगा, आपके दुख भी दूर करेगा, विश्वास भी करा वो ये जागा, क्योंकि हम सारा भटक लिए धक्के खा लिए। परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अपने आत्माओं जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडेरी खांसी, आवागवन की डोर गले मया पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे। भाई साचा सतगुरु कोए ना पूजे ये झूठो जगपतियासी, साचा सतगुरु कोए ना पूजे इन झूठो जगपतियासी, अंधे की मां गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पयु काल ठोके पंजारा, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे। सार शब्द सर जीवन बूटी गेस गेस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे, जग सारा, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे। सत साहिब अब क्या बताते हैं परमात्मा स्वयं ही आकर के अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद नहीं जाना, जग सारा रोगिया रे। अब ये जन्म मृत्यु का रोग लगा या तृष्णा बडरी खांसी, तृष्णा यहां की चाह, कोठी बना लो, कार बना लो, मैं सरपंच बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, या तो उसकी अपनी चाह। और यथार्थ ज्ञान ना करने से फिर क्या होगा? परमात्मा कहते हैं कबीर हरि की भक्ति बनियो राजा ऋषभ हो। ऋषभ कहे अच्छे बड़े खेचर ने जो घनी माटी डोगा और माटी लदे को मार के और घास ना डाले कोई। गधे के साथ एक और बना करे, और पशुओं को तो पालतुओं को बैल को गाय को भैंस को चारा घर भी डाल देते, पर गधे नहीं डाला करे कुमार। सारा दिन धंधा लेगा, शाम ने छोड़ देगा जा छकले की तरह जंगल में जाके। तो क्या बताते हैं परमात्मा के ये जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ी खांसी इच्छा या खांसी सी उठे, कहते हैं रह रह अपने आप बस की बात नहीं, त्यों कर लो न्यू कर लो, अरे एक मिनट में मृत्यु हो गया, जो करना था वो कर नहीं रहा, जो अगर मालिक का नाम भी साथ होगा तो ये काम भी तेरे ठीक होंगे, और परमात्मा आपको इतना ही देगा जितनी आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि ये माया जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ये जीव बालक है, हम बच्चे हैं, हमने कोई पता ही नहीं, हम पता नहीं किस चीज की चाह कर लिया, जैसे सर्प है, बच्चा सर्प को भी पकड़ लेता है और उसको डस देता है, वो मर जाता है या हानि बहुत हो जाती है। एक माई कह रही थी मेरी बेटी का लड़की का लड़का जो था छोटा सा था, को 2-2.5 साल का होगा, और वो कहीं पशुओं का अलग से बना रखा था, वहां सुबह सुबह वहां चला गया, वहां खेल लिया करता, अकेला बैठा रहता, तो वहां उसका सांप लड़ गया, तो उसके पैर पे लड़ा, तो उसका धीरे धीरे सोजस शुरू होगी, इब किसी का शक नहीं, उसने पता नहीं, वो लड़के गया उसका, उसने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि इससे तो मुझे इतना पीड़ा होगी बच्चे ने, तो वो ले गए किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा इसका सांप लड़ गया, लड़ा हुआ है। उस लड़के से पूछा कि बेटा वो कैसी चीज थी जो तुझे तेरे डस गया, वो तेरे को काट लिया? नो बोला भैंस के पूछड़ के साथ था, काला काला। अब उसको पता नहीं था बेचारे को, उसी को पकड़ने लग गया, उसे खेलने लग गया। तो कहने का भाव ये है कि जब बच्चा स्याणा हो जाता है तो सांप से परिचित हो जाता है कितना खूंखार जानवर है, तो फिर आप तो निकट आवे को नहीं, औरों को भी नहीं आने दे, दूर हो लो सांप आगा तो डांक ठोक देगा, छलांग लगाओगा भाग जाएगा। तो ऐसे ही जब तक हम इस व्यस से परिचित नहीं, इस माया से परिचित नहीं, ये कितनी भयंकर है हमारे लिए, तब तक हम इसको बस नो कठियाकरण पर लगे रहते हैं। अब देखो आप कितने उदाहरण सुनते हो देखते हो, एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र डॉक्टर और उसका कोई संतान नहीं, आर्ट का डॉक्टर और आर्ट का मरीज, आर्ट का डॉक्टर यानी दिल का डॉक्टर, रोग हार्ट विशेषज, दिल का जो विशेषज था, और दिल का रोगी और कोई संतान नहीं, 50 के आसपास आई है उसकी। हाँ उसने कहा नाम ले लो आप भक्ति करो, वो जाता जिक्र कर देता, एक दो बार तो डॉक्टर बोला को नहीं, हाँ ले आएंगे देखेंगे कभी टाइम लगेगा, फिर ने बोला भगत जी आप यह चर्चा करते हो ना, मन कति अच्छी नहीं लगती आप, क्यों आज तक मैंने आपको मना नहीं किया, नाराज ना हुई हो, पर यह चर्चा मेरा गिक्रिया ना करो, मन कति नहीं सुहाती। और तरह के जो भाई अब ये वो बाड़ी सत हो जाती है संतों की कि कबीर पिछले पाप से हरी चर्चा ना भावे ना सुहावे, कह ऊंगा कह ऊट चले ना और बात चलावे, इतना पापग्रस्त प्राणी था। फिर चलो उसने कहा जी मन ने वह चर्चा करनी बंद कर दी, उसके बारे में पूछने लग गया और कितनी माया है आपके पास, कितनी संपत्ति है, कितने पैसे है। नो बोला मुझे खुद पता नहीं मेरे बैंक में कितने पैसे, कुंडसे में कितने पैसे, संपत्ति की कोई कमी नहीं। अब वो उठ कर आ गया उस दिन, तो कहता महीने दो महीने के बाद क्या हुआ कि उसके हाथ में टेबलेट आर्ट का दर्द हुआ, और खुद आर्ट विशेष स्पेशलिस्ट हाथ में गोली ले रहा कुर्सी बैठा बैठा, पानी का नहीं हाथ कराया था, गोली फांकन भी ना पाया, इतना मर गया। चलो आम आदमी जन सोचा डॉक्टर ती जावांगे कदे मर जावा, और वो डॉक्टर सब कुछ सास बहादुर हॉस्पिटल में बैठा, फांकन भी ना पाया, खत्म हो गया। अब सिर पदर ले उस माया ने, वो बैंक बैलेंस कोई और बरतेगा, वो पाप ले गया कट्ठे करके गठड़ी सिर पदर ले गया वो डॉक्टर जी। अब जिस जिसके उसने ये बकवाद करके पैसे ऐठे थे, 2 के 20 बनाए, 100 बनाए, 200 बनाए, डॉक्टर तो आजकल कति जुलम कर रहे हैं, रहम नाम की चीज नहीं रही है भगवान। ये फ्री में काम क्या करते हैं, पहले एडिशनल वर्क होया करता है वैद्य का, किसी का आया दवाई जड़ी बूटी कुटी तैयार रखा करता है, कहता भगवान आत्मा वैसे दे देते थे और खूब आराम होया करते थे। और अब कित ले जाएंगे उस धन को, बिना ज्ञान के विष इकट्ठा कर रहे हैं। जब ज्ञान होगा, ज्ञान किस चीज से होगा, सतगुरु मिलेंगे जब होगा, तब यहां से इच्छा हटेगी। क्या बताते हैं, मन तुम चल रहे सुखे सागर जा सब सिंधु रत्नागर। अब इस गंदे लोक से मन हटाने के लिए, उस पूर्ण परमात्मा में मन लगाने के लिए, वहां श्रद्धा बनाने के लिए हमें परमात्मा की अमृतवाणी के एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे, ताकि वो रोग कटे हमारा। अब जैसे पीछे से समाचार पत्रों में आया था कि मंगोलिया देश का पूरा कैबिनेट जिसमें 97 आदमी 98 आदमी मर गए, 95 96 94, जिसमें उनका प्रधानमंत्री भी और सारे राष्ट्रपति भी और सारे मंत्री और फूले नहीं समावे थे, हैं या जावांगे आते ये कर देंगे, पता नहीं क्यों प्लान बना के धरके जा रहे थे। अन्य बेरा 2 मिनट में माटी में मिल जाओगे, कितना अंधा बना रखा है इस काल ने इस जीव को। उसके पुण्य है, वो जब तक बैटरी चार्ज रहती है पिछले पुण्यों की, इतना कितना कुछ उड़ ले, कितना कुछ कर ले, वही मिलेगा जो तेरे पूर्व प्रारब्ध में है। और यदि भविष्य में बैटरी चार्ज ना की, यानी सत साधना नहीं की, तो भाई फिर या एक कदम बैटरी डिस्चार्ज होगी। जैसे इन्वर्टर के अंदर आजकल उदाहरण बहुत अच्छे हैं जो आपको समझाए जा सकते हैं। इन्वर्टर की बैटरी होती है, उस पे चार्जर साथ लगा होता है, और चार्जर हटा दे और बैटरी चार्ज होगी, तो जब तक वो चार्ज रहेगी तो पंखे भी चलेंगे, लाइट भी जगेगी और कूलर भी चलेगा। और यदि फिर चार्जर नहीं लगा तो जब उसकी अक्षमता पूरी हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, एकदम सारी लाइट भी बंद और उजाला भी बंद, पंखे भी बंद, कूलर भी बंद, कोई सुविधा नहीं रहेगी, हाहाकार मच जाएगी। ऐसे ही जब तक पूर्व जन्म के पुण्य कर्म आपके साथ हैं, आप चाहे प्रधानमंत्री बन गए तो भी आप ही की पिछली करीब है, और चाहे मुख्यमंत्री बन गए, चाहे मंत्री या कोई और उच्च पोस्ट प्राप्त है, या कोई अच्छी फैक्ट्री मालिक है, धनाढ्य व्यक्ति है, तो तेरे पिछले संस्कार है, पिछले जन्मों के किए हुए पुण्य है, और भविष्य की तैयारी नहीं करी तो यह बैटरी नो डिस्चार्ज होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आ रहे थे और पता नहीं किस कारण से वो क्रैश हो गया, और 3 दिन पाछे तो उसको लाश मिली थी उसकी, कहां पड़ा है, कहां मरिया जाके। और जो उस पर आश्रित थे, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई करोड़ों का, कोई लाखों का, उसके साथ तालमेल करके उनको पता लग गया कि थोड़ा नाश होगा, तुमने किसी को सता रखा, वो तुमने ऐसे तंग करेगा, वो आत्महत्या करेगी 120 उसके साथ। अब परमात्मा कहते कि तुम इन मंत्री मुख्यमंत्री इन प्रधानमंत्रियों पर ही आश्रित हो गए, भगवान छोड़ दिया, और भगवान को छोड़कर तुम इन खुद ही जिनकी कोई सती थी नहीं, कोई पता नहीं कब इन पर कैर टूट जा, और इन्हीं पर चिपके रहते हो, ये तुम्हारी महानालाकी है। तुम परमात्मा को याद करो, परमात्मा सब कुछ करके देगा आपको। और राजा भी परमात्मा का ही बच्चा होता है, राजा से कार्य भी परमात्मा ही लेता है, ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि वह विवश हो जाएगा आपको लाभ देने के लिए, वो मालिक के हाथ में। यदि आपकी सत साधना सच्ची कमाई है तो वह आपको वो कार्य मालिक करके देगा, तो ये नहीं कर सकते। और राजा लोग भी जब हार लेते हैं, उनके राजकाज ठीक नहीं चलते, ये भी भगवान की तलाश में जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, परमात्मा से ही याचना करने जाते हैं। जैसे एक राजा जा रहा था, उसको बहुत जोर की प्यास लगी और भूख लगी। किसान था, उससे रुका, कहने लगा बहुत जोर का भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। उसने मतीरा दे दिया, मतीरा हुआ खरबूज जैसा, तरबूज जैसा हुआ का अच्छा बड़ा पक्या मतीरा लिया, तोड़ के बढ़िया छांट के लिया और उसको दे दिया। राजा की प्यास भी बुझ गई, पेट भी भर गया। तो राजा ने एक पर्ची बना के दे दी, भाई मित्र तने कोई आवश्यकता हो मेरे पास आ जाना, तने कोई नहीं रोकेगा। वो सर्टिफिकेट बनाकर उसको दिया। एक दिन किसान ने सोचा, लिया कुछ राजा तो मांग लिया हूं कि मैं वर्षा ना हुई। एक वर्ष के बाद राजा के पास गया, उसके पास वो सर्टिफिकेट था, किसे नहीं रोका, सीधा पहुंच गया महल में। तो वहां किसी से पूछा भी राजा तो मिल लूंगा, वो कहने लगे भाई बैठ जा भाई, अभी राजा अपनी भक्ति करे है। अब राजा नो कर रहा, हाथ जोड़ रहा है, परमात्मा बोला क्या कर रहा है कि भगवान से याचना कर रहा है कि मेरे राज में सुख रहे और मुझे बहुत ज्यादा, मैं बहुत विशाल राज्य मुझे प्राप्त हो, घना धनवान बन जाऊं, ऐसी याचना कर रहा है राजा। नो बोला रहा मैं तो भिखारी था, यू आगे भिखारी और पाया गया मैंने एक, अब मैं तो था ही, इससे मांगना था, यू मांगे भगवान ते फिर मैं उससे तो ना मांग लूंगा जिस पर यू मांगे। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, जब आपकी वृत्ति ऐसे हट जाएगी, भगवान पर लाग जाएगी, तभी आप उभरोगे। ये आप पे सचिर नहीं, और इन पर आप आश्रित होकर के कैसे सुखी हो सकते हो। तो इन बातों को ध्यान रखना होगा, ये बातें कहन सुन की नहीं, हृदय में जगह बन जानी चाहिए इनकी। ठीक है, फिर आप काम भी करोगे, बच्चे भी पालोगे, नौकरी भी करोगे, अपना मजदूरी जैसा धंधा वो करोगे, लेकिन मन उठा रहेगा कैसे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हरम सुरत परी तुम, ऐसे यो ध्यान लगावे। अब उसमें आपकी न्यो वर्ती रहेगी, सारा काम भी करोगे लेकिन न्यो रहेगी है भगवान, कद जाऊं अपने मालिक के घर पे, कद आओगा वो दिन। ठीक है, बच्ची लड़की अपने माता पिता के पास रहती है, लेकिन शादी होने के बाद उसको पक्का पता लग जाता है ये तेरा मूल ठिकाना नहीं रहा। तो फिर वो वहां भी आती है, काम भी करती है, महीने दो महीने रुकना भी पड़ जाता है, लेकिन उसका हृदय अपने ही घर में रहता है। तो ऐसे ही आपकी उस परम पिता से कनेक्शन हो गया, सगाई होगी, और अब चालन की तैयारी आपने करनी पड़ेगी। वो इस ज्ञान से ही आपको पता लगेगा। तो क्या बताते हैं, मन तो चल रहे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं, शंखों लहर बेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी ही, सुख का सागर सोई ही। कई बार आप अकेले बैठे होते हो सुबह सुबह या किसी भी समय, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर तक, ऐसी उमंग सी उठती है, और ऐसी उस समय कोई भी बुरा नहीं लगता, दुश्मन भी पराया नहीं लगता, ऐसी आत्मा के अंदर एक ऐसी न्यारी व्यवस्था बन जाती है। तो वो है मेहर की लहर, सबके प्रति दया भर जाती है। कहते हैं उस सतलोक में ऐसी लहर शंखों, हमेशा इतनी गुदगुद आत्मा रहेगी, कोई शत्रु तो वहां है ही नहीं, क्योंकि कोई भाई बंटवारा ना, कोई काम धंधा ना, सारी चीज तैयार मिल रहे। जैसे हम यहां पर सब ये चाहते हैं कि थोड़ा काम करूं, धन गणा मिल रहा, सुविधा सारी हो। तो यह वृत्ति मारी वहां थी सतलोक में, तो वहां पर कोई काम नहीं, सारी व्यवस्था वहां आपके आगे रहेंगी, निष्कर्म। सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको, बिना काम किए ही प्राप्ति वहां होगी आपको। तो क्या कहते, जब वो लहर चली जाती है अंदर से, फिर वो एक कैर टूट जाते हैं, फलाना काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, यानी वो अंदर फिर उथल पुथल शुरू हो जाती है, वो कहर की लहर होगी। तो सतलोक के अंदर कहते हैं उसको सुख सागर कहते हैं, शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अपनात्मा जग सारा रोगी आरे, जिन सतगुरु वैद नहीं जाना जग सारा रोगी आरे। जन्म मरण का रोग लग गया, तृष्णा बढ़ी खांसी, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मरण का रोग। अब देखिए प्रमाण, श्री मद देवी भागवत। पुणात्मा ये ऐसा ज्ञान हो गया, इसमें रह रहकर ये प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरे विश्व में जाना है। एक दिन वो भी आएगा, सभी चैनलों पर ये ज्ञान चलेगा, तो इसमें रह रहकर ये प्रमाण दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो पहली बार कोई भक्त सुनेगा एकदम उसके तो कुनीन जैसा मुंह कड़वा हो जाएगा, जैसे कुनीन की गोली खाया करे। और पुण्यात्माओं जिसके कोई रोग है मलेरिया, तो कुनीन की गोली खानी ही पड़ेगी, चाहे इच्छा करके खा ले चाहे अनिच्छा से खा, वो खाए बिना रोग कटे को नहीं।